आचार्य श्री के साथ का कोई संस्मरण सुनाइएगा। मुक्तागिरी में साल 80 की बात है, मैं उस समय छुल्लक था और आचार्य महाराज के पास ही अपने हाथ से पटा बिछा करके पाटाइए और सोना पड़ता था। अपने हाथ से उठा सको तो बिछाओ, अपने हाथ से बिछा सको तो बिछाओ, बस कोई तुम्हारे लिए हेल्प नहीं करेगा कि आप अपना पाटा एक तुम्हें उठाने धरने के लिए, पहले ऐसा था नियम, तो बिछा लिया, बाद में सुबह से उठा के रखना पड़ेगा। वहीं सोते थे, रात को जो है आचार्य श्री की नींद जब खुलती थी तो फौरन उनके जरा सा आठ होती थी और अपन उठ के बैठ जाते थे। उस दिन देखा कि लगभग डेढ़ बजे होंगे, एक या डेढ़ आचार्य श्री के उठने की आवाज आई, तो मैं भी उठ करके जो है और बैठ गया। अंधेरे में तो वहां कुछ सूझता नहीं, अपना हाथ ही हाथ को नहीं दिखता, शांति से जो है बैठ गए और आचार्य श्री बैठे रहे। सुबह जब भक्ति ये पढ़ते हैं स्तुति वगैरह, तो स्तुति वगैरह आचार्य श्री ने पढ़ी और उसके पहले, और अचानक उनके मुंह से निकला, भगवान को तो निर्वाण हो गया, हमें कब निर्वाण की प्राप्ति होगी। वो जिस तरह से वो आज भी मेरे कानों में वो ध्वनि आती है, जिस भीगे हुए परिणामों से आचार्य श्री ने कहा था, वो आज भी लगता है कि अगर इतनी वेदना किसी के भीतर है, भगवान महा को तो निर्वाण हो गया, मैं कब निर्वाण प्राप्त करूंगा, तो जरूर भव्य जीव और अपना निर्वाण वो कर लेगा। वो चीज मुझे आज भी कानों में आती है और उसके बाद ही फिर भक्ति हुई और भक्ति के जस्ट बाद आचार्य श्री ने बुलाया, इधर आओ, ठंड तो नहीं लगती? मैंने कहा थोड़ी लगती है। अच्छा, दुपट्टा छोड़ोगे? जैसी आपकी आज्ञा। रखवा लिया दुपट्टा। कटोरा कहाँ है? चुल्लक जी को कटोरे में आहार करना रहता है, कटोरा मिलता था, कटोरा कहाँ है? उठा लाओ। उठा लाए, वो भी रखवा लिया सामने। बस अब तुम्हें कटोरे में आहार नहीं करना, हाथ में करना है, दुपट्टा नहीं ओढ़ना है, ठीक है? मैं जैसा कहूंगा वैसा मानोगे? मैं जैसा कहेंगे आप वैसा मानो? मैं दो दो पांच कहूंगा पांच मानोगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल पहले नंबर पांच मानूंगा। होते होंगे किसी के यहां दो दो चार, आप कहेंगे दो और दो पांच होते तो मैं मानूंगा। नौ बार नमोकार पढ़ लो और फिर उसके बाद एलक कह करके और सब संघ से जय बुलवा दी, एलक दीक्षा, एलक दीक्षा हो गई, खत्म बात। इसमें कोई इतना, उसी दिन दीपावली के दिन की बात है जब आचार्य श्री ने ये कहा उस समय, और सुबह सुबह से एक एलक दीक्षा और दे दी, खत्म। और फिर मेरे साथ में मुझे लेकर के चले गए शौच के लिए। पूरे समय तक आचार्य श्री का पहले था कि सब जो लोग साथ में जाते थे, शौच में किसी को देर भी लगे तो बाकी लोग वेट करते, आचार्य श्री वेट करते, खड़े रहते थे, साथ में लेके आते थे। वो सारे दिन अब सब स्मृति में है और वही तो संभाले हुए हैं भैया, नहीं तो और कोई और कोई चीज नहीं है जो कि आज के इस समय में और संभाले, कृपा गुरु की वो संभालती है। मुझे ऐसा याद आता जब कभी आठ दिन तक तो अंजलि ही नहीं बनती थी तो फिर क्या करते थे, उनने सब्जी दे दी तो सब्जी अलग से खा लेते थे, दाल दे दी तो दाल अलग से, रोटी में दाल लपेटती नहीं बनती थी, वो नीचे गिर जाती थी शुरू शुरू में, तो आठ दिन तक ऐसे ही पूरा पाँव आओ सब छबा छबू करके आ जाते थे, आधा भीतर जाता था आधा खा के आ जाते थे, और कटोरा नहीं मिला तो फिर उसके बाद इसमें ऐसे करके धीरे धीरे करके और सीख गए। अब लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो मुझे इसीलिए तो लगने लगता है कि करके देखो तब पता लगेगा। निंदा करना बहुत आसान है मुनि महाराज जी की त्यागी वृत्ति की, लेकिन एक 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 कदम त्याग करके और धीरे धीरे अपने परिणाम संभाल के आगे बढ़ो तब मालूम पड़ता है। जैसे किसी ने कहा था कि फूल तोड़ना आसान है, फूलों को कुचलना आसान है, लेकिन एक बीज बो करके और फूल का पेड़ लगाओ, फिर देखें कि किसी को हाथ से छूने भी देते हो कि नहीं देते, कैसी तपस्या करके जब फूल लगते हैं तब मन मुस्कुरा जाता है, कोई लगाए तो हाथ उन फूलों को, और वैसे तो हम तोड़ के और उनको फेंकते रहते हैं। ठीक ऐसे ही ये है, व्रती की और व्रतों की निंदा करना बहुत आसान है, एक व्रत अपने जीवन में पालन करना, मिथ्यात्व के साथ ही पालन करके बता दो, मैं तो चैलेंज करता हूं, सम्यक दर्शन जब होगा जब कर लेना सम्यक दर्शन के साथ, अभी मिथ्यात्व के साथ ही करके व्रत नियम पालन करके तो बता दो, देखें कैसे कषाय मंद नहीं होती है। व्रत नियम संयम लेने से कषाय मंद होती, कल्याण होता है, लेकिन क्या करें ऐसा समय आ गया कि व्यक्ति विषय कषाय का निषेध नहीं करता और कहता है कि सम्यक दर्शन के बिना कैसे व्रत नियम ले लूं, अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूं जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तब व्रत नियम लेऊंगा। देखो तो कैसा संसार आ गया, ऐसा सोच करके लगने लगता है ये संस्मरण सुना दिया और उपदेश भी दिया। हमारी उपदेश देने की बहुत आदत है, क्या करें, संस्मरण सुनाने का कहा था और हमने उसके साथ उपदेश दे दिया, गड़बड़ हो गई, अब आप संभाल लीजिएगा उसका। हम सभी लोग तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हैं, आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने किसकी पूजा करी, उनके माता पिता ने किसकी करी, ये पूछ लेना चाहिए था। आदिनाथ भगवान के पहले तो कोई तीर्थंकर थे ही नहीं, तो उनके माता पिता किसको पूजते थे, तो कहते उनके माता पिता कुलकर थे, अवधि ज्ञानी थे, विदेश क्षेत्र में जैसी परंपरा चलती है उसके अनुसार वे यहां पर भी उन श्रीमंदिर भगवान को प्रणाम करके और जो भी विदेह के 160 तीर्थंकर हैं उन सबको प्रणाम करके और पूजन इत्यादि सब किया करते थे। फिर जब तीर्थंकर हुए तो उन्होंने भी, तीर्थंकर के साथ तो ऐसा है कि वे किसी को प्रणाम नहीं करते, वे तो नमः सिद्धेभ्यः सिद्धों को प्रणाम करके दीक्षा ले लेते हैं, वे स्वयं अरहंत बनने वाले हैं, इसलिए उनको तो पूजा और उसकी आवश्यकता नहीं। उनके माता पिता ने जरूर जो है विदेश क्षेत्र में स्थित तीर्थंकरों की दीक्षा किससे ली, भगवान को दीक्षा किसी से नहीं लेना पड़ती, वे जगत गुरु हैं भैया, उनका कोई गुरु नहीं है, उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी सब सीखे हुए आते हैं, सारी चीजें उनको, सब विद्याएं उनको आती हैं, बचपन से जो है उनके अनुव्रत के जैसा तो आचरण होता है, अवधि ज्ञान लेकर के उत्पन्न होते हैं, दीक्षा लेते ही मन परे ज्ञान हो जाता, 63 रिद्धियां हो जाती हैं, अकेला केवल ज्ञान शेष रहता है भैया, इसलिए उनके बारे में ऐसा आप मान के चलिएगा। मैंने सागर से कहा कि तुम कितने गहरे हो, सागर कहता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा गहरे हो। मैंने सागर से कहा कि तुम कितने गहरे हो, सागर कहता है तुम मुझसे भी ज्यादा गहरे हो। मैंने आकाश से कहा कि तुम कितने ऊंचे हो, आकाश कहता है तुम मुझसे भी कई गुने ऊंचे हो। मैंने सूरज के सामने माथा झुकाया और कहा कि तुम कितने तेजस्वी हो, सूरज कहता है तुम मुझसे भी अधिक तेजस्वी हो। फिर मैंने आदमी से कहा कि तुम कितने महान हो, तो आदमी कहता है कि तुम ठीक कहते हो। आदमी ने बहुत जल्दी अपनी महानता स्वीकार कर ली है, बाकी सबसे कहा कि तुम महान हो तो वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं, आप ही महान हो, महान कहने वाला महान है, लेकिन आदमी से जब कहा कि तुम कितने महान हो तो आदमी कहता तुम ठीक कह रहे हो। हम है ही वैसे, ये व्यंग था मतलब आदमी के ऊपर, ये कविता याद आ गई, इन्होंने लिख करके भेजा था। देशावकाशिक शिक्षा व्रत और प्रोषदोप शिक्षा व्रत, इन दोनों का अर्थ बताने की कृपा करें, दोनों महाराजों को नमोस्तु। तो भैया ऐसा है, देशावकाशिकम वा सामयिकम प्रोषदोपवासो वा भैया व्रत्यम शिक्षा व्रतानी चत्वारी शिष्ठानी, ये चार शिक्षा व्रत श्रावकों के कहे हैं रत्नकरण श्रावकाचार में। और दिग्व्रत अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण, ये जो है तीन कहे गए हैं गुण व्रत। उसमें जो दिग्व्रत आया है तो उसका क्या अर्थ है पहले इसको समझ लो, तो देशावकाशिक समझ में आ जाएगा। दिग्व्रत किसे कहते, दसों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा निश्चित करके उससे बाहर नहीं जाऊंगा ऐसा संकल्प करना, ये दिग्व्रत कहलाता। और दिग्व्रत में जो दसों दिशाओं की सीमा निर्धारित की थी उसमें भी फिर ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा गमना गमन प्रमाण थान हां अन्य सकल निवारा, अन्य सबका निवारण कर देते हैं, जो दसों दिशाओं की सीमा रखी उसमें भी आज 14 से अष्टमी है सो अब मैं अपने शहर से बाहर नहीं जाऊंगा, 4 महीने तो मैं मध्य प्रदेश से भी बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसी उसमें और कम कम सीमा कर ली, और अष्टमी के दिन तो ऐसा कर लिया कि घर से ही बाहर नहीं जाऊंगा, बाजार तक जाऊंगा नहीं तो नहीं भी जाऊंगा, ऐसे करके सीमा को कम करते जाना, ये देशावकाशिक कहलाता। और प्रोषद का अर्थ होता है पर्व, अष्टमी चतुर्दशी ये शाश्वत पर्व हैं, इन पर्व के दिनों में उपवास करना इसको बोलते हैं प्रोषदोपवास। प्रोषद अर्थात पर्व, तो पर्व के दिन किया जाने वाला उपवास प्रोषदोपवास कहलाता, एक परिभाषा इसकी ये है। और एक प्रोषद का अर्थ होता है एक बार भोजन, तो अब क्या अर्थ हुआ,
जिस उपवास के दोनों तरफ एक एक बार भोजन किया जाए, ऐसे उपवास को प्रोषभोपवास कहते हैं। मतलब आठों को उपवास करने हैं तो सप्तमी का एक आसन और नौमी का भी एक आसन और अष्टमी का उपवास, ये कहलाएगा प्रोषभोपवास। और नहीं तो सामान्य रूप से अष्टमी का उपवास, प्रोषभ का मतलब पर्व ले लो, तो पर्व के दिन उपवास करना। आहार देखने से पुण्य मिलता है या केवल आहार देने से ही पुण्य मिलता है, समझाइए। आहार देने वालों को आहार देने से मिलता है और देखने वालों को देखने से मिलता है। अगर कदाचित देखे वारे सोच लेवे, नहीं देह वारे सोच लेवे कि अपन भी देखें, तो देह को इसलिए हमने इसका जवाब ऐसा दे दिया कि आहार देने वालों को देने का पुण्य मिलता और देखने वालों को देखने का मिलता है। तीनों कृत कार्य तन्मोदना अपने यहां पर, हम अगर देने के योग्य हैं और नहीं दें तो ठीक नहीं है। हम दे सकते थे और नहीं दिया तो कोई पुण्य नहीं बंधेगा, और नहीं दे सकते, दूसरे से कहा कि हम तो इस योग्य है ही नहीं, आप देओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दूसरे से दिला दिया और कहते कि अगर दूसरे से दिलाने की गुंजाइश भी ना हो तो कोई दे रहा हो तो उसका समर्थन करना कि बहुत अच्छा आप तो देव ही, हम तो न दे पा रहे न किसी से कह पा रहे, हम तो अकेले देख ही रहे हैं। इसलिए ये तीनों चीजें रखी गई हैं। ऐसी स्थिति में जिसके जैसे परिणाम होंगे उसको वैसा पुण्य मिलेगा। देखने वाला ये न सोचे कि उससे कम मिलेगा, उसको भी मिलता अगर परिणाम अच्छे हैं, और देने वाले को ही सब कुछ मिले ऐसा भी नहीं है। अगर उसके परिणाम खोटे हो जावे, अहंकार कर लेवे कि देखा मेरे आहार से महाराज का मोक्ष मार्ग चल रहा है, ऐसे अहंकार करके आहार देवे तो उसके आहार का कोई पुण्य नहीं, और देखने वाला मन ही मन सोच रहा कि हम तो दे ही नहीं पाए, हमें अवसर मिलता तो हम भी देते, तो उसने पुण्य का देने बराबर पुण्य का बंद कर लिया। बाहर जाते समय मुर्गे पिंजरे वगैरह में बंद रहते हैं उस समय बहुत दुख लगता है, उस समय क्या करना चाहिए? अपनी सामर्थ्य होवे तो जो पिंजरे में बंद पक्षी अपन को दिख गए, कोई बेचने वाला है वो, तो उससे क्या करते, कई लोग करते हैं इस तरह का, बड़े बड़े शहरों में बताते वो कि उनका हर महीने का टारगेट है कि इतने रुपए हम इस पे खर्च करेंगे, तो वो उनसे कह देते हैं कि हमें दे दो, दे करके उसको उन्हीं के सामने छोड़ देते हैं और पैसे में ले लेते हैं। और क्या कर सकते, अपन एक जीव की अपन ने रक्षा करी, बहुत बड़ा पुण्य अर्जित कर लिया। हाँ, बेच रहा था वो पिंजरे में बंद करके, उसको कितना दुख हो रहा होगा, और उसको अपन ने खरीद के और फौरन आकाश में उड़ा दिया। तो ये पुण्य का काम, ऐसा भी कुछ लोग जो है वो करते हैं ऐसा काम। अकेले दुख होना तो ठीक है, लेकिन सहानुभूति भी बहुत अच्छी है, पर जितना बने उसके लिए उपाय भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले दुखी होके आगे बढ़ गए, नहीं, उपाय भी करना चाहिए। अभी देखो वो सब गायें वगैरह जो एक साथ पकड़ी गई हैं, उन सब के लिए चारा और उसकी व्यवस्था के लिए हमारे पास आए थे कि महाराज, तो हमने कहा भाई लोगों से कल या आज ही अभी शाम को भी जानकारी तो दे ही दी कि आप लोग आपस में मिल करके और उनकी मदद करने का मन बना लीजिएगा, और कल जो भी हो वो कलेक्ट करके, और जो गायें पकड़ी गई कम से कम जब तक वो वहां गौशाला में हैं तो उनके एक्स्ट्रा खाने पीने का लोड आ गया। वो आए थे हमारे पास कि 100 गायें तो हैं, उनका तो हमारे पास भूसा है पूरे साल भर के लिए, अब ये 108 और गायें आ गई, इनके लिए जो है वो समाज जो भी जिसको भी जितनी सामर्थ हो उतना करना चाहिए भैया। इस तरह का जो बात संस्कृत में बनाए गए हैं सूत्र, उसमें से उसमें सूत्र है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। इतना बड़ा नहीं भी हो सके कि अविनाशी अखंड और चैतन्य स्वरूपी मान लो नहीं होता, तो इतना ही करो, एसी की माला, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं, मेरा स्वभाव जानना देखना, हो गया, इतना आसान, लगातार इसकी भावना करेंगे, लेकिन अकेले शब्दों शब्दों में नहीं। हाँ, कभी अगर कोई शरीर में पिंच वो दे रहे तो चिल्लाना नहीं फिर, हाँ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर तो अगर शरीर नहीं हूं तो फिर तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चिल्ला पड़े तो फिर इसका मतलब है कि शरीर और आपने एक मान लिया उसमें। धीरे धीरे अभ्यास करने से, अरे वर्णी जी को कार बनकर फोड़ा हो गया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की बात है, देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब एक अंग्रेज डॉक्टर आया था और उसने कहा कि बाबा जी ऑपरेशन करेंगे और सुन्न करना पड़ेगा। अरे कहने लगे भैया, घर से हम दोस्त हो गए, थोड़ी घर छोड़ो थे हमने, अब हम दोस्त तो नहीं है, तुम्हें अपने कन्ने से कर लो। तो कहने लगे कि वैसे तो नहीं होगा। तो कहते नहीं, आप तो बिना सुन्न करें और कर सको तो करो, के लिए आप हिल जाओगे। कहने लज्जा गारंटी हिल है मैं, और जो है यहां पैर में उनको इतना बड़ा फोड़ा था, लेट गए और फिर कहने लगे कि जब शुरू करो सो बता दियो। ने कहा ये भी अजीब बाबा जी हैं। तो जब शुरू किया ऑपरेशन, कहते बाबा जी अब शुरू कर रहे। कहने ठीक है, और उनने जो है समय सार उनको कंठस्थ था, अमृतचंद स्वामी की संस्कृत की टीका जो उनको अर्थ लगावो कठिन है, आज हिंदी में पढ़ रहे लोग सब, संस्कृत की टीका कंठस्थ थी। तो ऑपरेशन चलता रहा, वे अपने उसके चिंतन में लगे रहे। जब डॉक्टर ने कही कि होगा बाबा जी, कहने ठीक है, हाँ, इतने सहज रूप से जब उनने कहा हो गया आपका ऑपरेशन, कहने ठीक है तो कोई बात नहीं, अब कहा क्या करें, हम बंद करेंगे तो अपने चिंतन कर रहे थे हम। आधे घंटे तक ऑपरेशन चला, लेकिन न पैर हिला न मन में कोई वेदना का भाव आया। कैसी सामर्थ आ जाती है, शरीर से मोह जितना कम हो जाता उतनी आत्मा की सामर्थ बढ़ जाती है। उसका उपाय यही है कि निरंतर ऐसा चिंतन करो। क्रोध क्यों आता है और क्रोध को जीतें कैसे? एक बार राज्यपाल आए थे भोपाल में और उन्होंने यही कहा कि मैं भगवान महावीर स्वामी से इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, माया नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ये नहीं कहते। हाँ, वो ये कहते हैं कि अगर क्रोध आ जाए तो हम बताते कि जीतना ऐसे चाहिए, वो तो आएगा ही। ये कहना तो आसान है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आ जावे तब उसको कैसे जीतना, ये भगवान महावीर स्वामी ने बताया। इसलिए मैं भगवान महावीर स्वामी से जैन नहीं होने के बाद भी प्रभावित हूं कि वो हमें प्रैक्टिकली वो चीजें बताते हैं, अकेला निषेध नहीं करते हैं, प्रोसीजर देते हैं। तो सबसे पहले ये विचार करें अपन की क्रोध आता क्यों है। तो एक ही चीज है क्रोध का, अगर कोई कारण है, मेजर फैक्टर या कि रूट कॉज जिसको अपन कहते हैं, वो है हमारी अपनी अपेक्षाएं। हम जितनी ज्यादा अपेक्षा रखेंगे दूसरे से या कि स्वयं से भी व्यक्ति की बहुत अपेक्षाएं होती हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, या दूसरे को ऐसा करना चाहिए या दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का जिसका सोच है वो व्यक्ति झट से क्रोध में चला जाएगा। ये एक तरह का लोभ है। अगर देखा जाए तो क्रोध का वायर कहां जुड़ा हुआ है, वो लोभ में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले लोभ जागृत होता, दिखता नहीं है। लोग सोचते हैं कि क्रोध कषाय बड़ी है, भैया सबसे बड़ी लोभ कषाय है। लोभ कषाय से ही सारी कषायों के तंतु जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमारे अंदर ये लोभ जागृत हुआ कि मेरे विचारों के अनुरूप सबको चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा और वैसा होना चाहिए, ये लोभ है। ये लोभ जो है कभी माया में बदल जाता है। उस लोभ की पूर्ति के लिए मायाचारी करते हैं। मायाचारी प्रकट हो जाती तो मान को धक्का लगता, और मान को धक्का लगता तो गुस्सा आ जाता। ऐसा ये इसका सिस्टम है, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और झट से कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। गुस्सा आया और जैसे ही बाजू वाले ने कहा, कह रही गुस्सा ने करो, कहां है बैठी जानी ना ख्याल फौरन, हां ठीक बात तो है, या कि अरे तुम इतने बड़े हो गए गुस्सा कर रहे, अब फौरन मान आ गया कि हां मैं इतना बड़ा हूं, मैं गुस्सा कैसे करूंगा। वो गुस्सा मान में बदल गया फौरन, और किसी ने बाजू वाले ने कहा कि अब इन्हें करो, चार जने देख रहे हैं ठीक है, अबे दबा लो मायाचारी, बाद में फिर करेंगे। ये तुरंत के तुरंत हम कन्वर्ट कर लेते, चारों कसाएं इतनी फ्लेक्सिबल हैं, इतनी जल्दी हम कन्वर्ट करते हैं कि हम ही नहीं समझ पाते कि हमने कब क्रोध को मान में कन्वर्ट कर दिया, कब लोभ को क्रोध में कन्वर्ट कर दिया। मैं लेकिन अगर कोई कारण है तो हमारी अपनी अपेक्षा, हमारा अपना लोभ। अंततः अपन देखते हैं, उदाहरण देता हूं, रास्ते से चले जा रहे थे पिताजी और पॉकेट से रूमाल निकाला और उतने में एक 10 का नोट नीचे गिर गया और बेटा साथ में चल रहा, उसने भी नहीं देख पाया और पिता ने भी नहीं देख पाया और पीछे से एक आदमी ने देख लिया और उसने उठा करके दिया, तो उससे क्या कहा? थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देख लिया और उठा के दे दिया। और लड़के की तरफ गुस्से से देखा, क्या रे तू साथ में चल रहा और देख नहीं सकता था, 10 रुपए का नोट गिर गया। बेवजह, उससे अपेक्षा थी ना, उससे अपेक्षा थी कि मेरा बेटा है और ये तो उठा के दे गई और उसने नहीं उठा के दिया तो उस पर गुस्सा, और जो उठा के नहीं दे सकता था फिर भी उसने दिया तो उसको थैंक्स। अब आगे बढ़े, 100-200 कदम चलने के बाद अब की बार फिर से जेब से रुमाल निकाला और एक नोट फिर नीचे गिर गया, बेटा बिल्कुल सतर्क था, उसने फौरन उठा के दे दिया तो कोई थैंक्स नहीं, तुम तो दे गए उठा करके, और नहीं तो क्या। अपेक्षा पूरी होने पर थैंक्स भी नहीं, अपेक्षा पूरी नहीं होने पर क्रोध। इसका एक ही कारण समझ में आया है, हमारी अपनी अपेक्षाएं, हम उस क्रोध को जीतने के लिए कम से कम अपेक्षाएं रखें, जो जितना संतोषी होगा उसको गुस्सा उतने ही कम आए, और कुछ नहीं है। गणित इतना ही सा, जो जितना तृप्त है अपने में, फुलफिल सेटिस्फाइड है वो सबसे, किसी से कोई गुस्से नहीं आता उसके मन में, क्योंकि वो अपने आप में सैचुरेटेड है, वो अपने आप में संतुष्ट है, ना किसी से कोई अपेक्षा है, ना उधो को लेने और न माधव को देने। अब ऐसे आदमी को तुम का गुस्सा दुआ बताओ, ये तो हम और आप हैं जिसको कि हमेशा अपेक्षाएं लगी हुई हैं दूसरे से और अपने से, और हम हमेशा क्रोध में फौरन कषाय में गिर जाते हैं, या कि निमित्त हम जुटा लेते हैं और अपने कषायों की उदीर्णा करवा लेते हैं। सिद्धांत की भाषा तो ये है, और सामान्य रूप से तो हमने आपको यही कहा, जीतने का उपाय क्या है, संतोष धारण करें, और भी उपाय हैं, हम महत्व ना दें घटनाओं को, जो घटनाएं हमारे विपरीत घटित होती हैं, जो चीज हम पसंद नहीं करते हैं वो हमारे सामने होने पर हम उसे महत्व ना दें, हम महत्व देते हैं इसलिए वो चीज हमें प्रभावित करती है। होली के दिन कोई कितनी बड़ी गाली दे दे वे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होली है, और उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद इतनी बड़ी गाली दे वे तो गुस्सा काहे को आती, उस दिन क्यों नहीं आई थी। इसके मायने हैं कि मैंने उस दिन उस चीज को महत्व नहीं दिया, मैं बाद में महत्व देता हूं तो वो चीज महत्वपूर्ण होकर मुझे प्रभावित। इनमें हमसे ऐसी क्या नहीं जी, इतने से अरे हमारे सामने खेले, अच्छा ले साहब, ये नहीं सोच रहे हैं कि इनके पास इतने गरीब आदमी के दो मीठे शब्द भी नहीं है, इसे इनने कड़े कह लाए, अच्छी बात है कह लो भैया, दो और कह लो, जो तुम्हारे पास है वही तो दे हो, तुम सड़ी चीज है तो सड़ी टिका दे, हमारे लाने अच्छी होती तो अच्छी ना टिका देते हमारे लाने। ऐसा विचार नहीं आता किसी के कड़े बोल सुनकर के, ये विचार आना चाहिए कि देखो कितना गरीब आदमी है, दो मीठे शब्द भी नहीं आए के पास, दया का पात्र है, क्या करें, क्रोध का पात्र नहीं है वो, लेकिन हम उसको क्रोध का पात्र बना के खुद अपना, ऐसा लगता है कई बार जैसे कि और लोग तो हो गए चाबी और हम हो गए खिलौना, शून्य जैसे ही बटन दबाओ और हम चालू हो गए, उनने गाली दी तो गुस्सा आ गई, उनने प्रशंसा करी तो गदगद हैं, बिल्कुल हैं खिलौने तो नहीं हो गए जी हम, आप विचार करो आप जरा से उसमें, ऐसा अपने को सोचना चाहिए। तो क्रोध जो है विमर्श करने से भी चला जाता है, विचार करने से भी क्रोध को जीता जा सकता। विचारों को महत्व न दें, परिस्थितियों को बहुत महत्व न दें जो हमारे प्रतिकूल हैं। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर मैंने संसार बढ़ाया है, ऐसा रोज पढ़ते हैं जब पूजा करते हैं, और प्रतिकूल संयोग आने पर क्रोध में फिर गिर जाते हैं। नहीं, हो सकता है कि जो आप चाहते हैं वो दूसरे के समझ में नहीं आ रहा हो, वो अपने मन से ठीक कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल गड़बड़ कर रहा है। संभव है उसका भी मन है, जरूरी नहीं है कि वो आपके मन से टैली करे। तो पहली चीज कि जिन वजहों से गुस्सा आता है, जिन प्रतिकूलताओं से क्रोध आता है, उनको महत्व न दें, वहां से हट सकें तो हट जाएं, और अगर नहीं हट सकते तो ओवरलुक करें और अनदेखा और अनसुना करें, उसको जैसे मैंने सुना ही नहीं, आपने गाली दी मैंने सुना ही नहीं दी होगी। गांधी जी को 10-10 पेज की गालियां लिख करके भेजी किसी ने, और फिर इंतजार कर रहा है कि देखें गांधी जी क्या जवाब देते हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो उसने एक दिन रस्ते में पूछ लिया कि चिट्ठी मिली हमारी, कहने लगा मिली तो अभी, कैसी लगी आपको? कहते बहुत पसंद आई, उसमें जो अलपिन लगी थी वो तो अभी भी काम आ रही, बाकी तो हमने कचरा की टोकरी में फेंक दी थी। अब बताइएगा, नो रिएक्शन एट ऑल, कोई रिएक्शन नहीं। ऐसा बहुत मुश्किल होता है, पर ऐसा बनाना चाहिए। अपन लोग जो है आदत हो जाती है कि हर चीज का अपने हिसाब से एनालिसिस करके और उसका तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं। अगर थोड़ी देर शांत रहें, कोई व्यक्ति कुछ भी कहे और उससे मेरे अंदर अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो कम से कम वचन तो रोक लेना, चुप तो रह जाना, विचार करना कि रिप्लाई कैसे देना। जरा वजनदार, अगर गाली देना तो जरा वजनदार सोच के दे ना, कौन सी किस्म की दी, बहुत है अपने पास, उसमें से अच्छी वाली देंगे। इसने जब इतनी मजबूत वाली गाली दी है तो अपन उससे मजबूत वाली देंगे, 5 मिनट रुक करके देंगे, एकदम जल्दी में नहीं। जल्दी में तो फिर 2-3 गाली देंगे तो वो सब खराब हो जाएंगे, उससे वजनदार और लाना पड़ेगी एक। तो ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन वो जो 5 मिनट सोचने में लगेंगे तो फिर उसके बाद उसकी गाली भी व्यर्थ हो जाएगी और आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी रिप्लाई। है तो तरीका ये, चुप रह जाएं हम थोड़ी देर के लिए, या कि अपन कहते हैं सामान्य भाषा में कि भैया थोड़ा इनको गर्मी बढ़ गई, ठंडा पानी पिलाओ। वो ठंडा पानी हमारे भीतर जाकर के क्या चेंजेस करता है, ये केमिकली अगर देखा जाए तो जब जब भी हम एक्साइट होते हैं, क्रोध हमारे भीतर आता है, तब हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स में से एड्रिनलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीज होता है और वो हमारे ब्लड में और अधिक उत्तेजना फैलाता है, ये साइंस की भाषा है। और हम पानी पी लें तो किडनी अपना फंक्शन करती है, तो वो सिक्रीशन जो हुआ वो डाइल्यूट होने लगता है, क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, उतनी देर हम एंगेज हो गए। साइकोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, बेचैनी है, चिड़चिड़ाहट है और आपके पास में कागज है, तो कृपा करके आप जो है कागज को बढ़िया से मोड़ मार के उसकी हवाई जहाज बनाइए और उड़ाइएगा। आप अपने को किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगा लीजिए, किसी भी, जबकि वो एनर्जी आपकी डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार है कि मैं इसको ये करूं और उसका वो करूं इस तरह से, तो आप उस पूरी एनर्जी को कंस्ट्रक्शन में लगा दें। अगर आप चश्मा पहने हैं और आपको बहुत गुस्सा आ रही तो चश्मा उतार करके उसको जरा पोंछे जोर से, फिर लगा लें। और अगर आप टेबल पर बैठे हुए हैं और बहुत गुस्सा आ रही है आपको, वहां से गुस्से में आए हैं आप, और हो सकता है कि आप किताब विताब फेंक दें, तो किताब विताब ना फेंकें, सब किताबों को एक तरफ संभाल के रखें, अच्छा और को झटकार के टेबल को, क्लॉथ को फिर से बिछाएं, फिर से किताबें ठीक से जमाएं, उतनी देर में आपका सब शांत हो जाए, वो सारी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कंस्ट्रक्शन में लग जाएगी। एक उपाय इस तरह भी कर सकते हैं, वातावरण को हल्का करने के लिए मैंने आपको कई उदाहरण सुकरात के सुनाए थे और भी लोगों के सुनाए थे, उनमें से कोई भी उदाहरण याद कर लें। मुझे दूसरे के को क्रोध में ईंधन नहीं डालना है, वो तो आग वैसे लगी हुई है और ईंधन और डालेंगे तो बढ़ेगा। परस्पर एक दूसरे को के कषायों को हल्का बनाओ, वातावरण को हल्का कर दो, ताकि सामने वाले की जो कषाय की उदीर्णा हो रही है वो थम जाएगी। उदय तो सहन हो जाता है, उदीर्णा तेजी से होने लगती है, और एक के बाद एक चार बातें शुरू होती। हमने आपको एक उदाहरण नहीं सुनाया था कि एक विदिशा की बहन ने मेरे से कहा कि महाराज वापस ऑफिस से लौटते हैं तो दो चार बातें कड़ी कह देते हैं और फिर हमसे जितना सहन होता सो सहन कर लेते, उसके बाद हम भी एक बात कड़ी कह देते हैं और फिर बाद में दोनों जन दुखी होते हैं और रोज का ये क्रम है। कोई उपाय बताओ आप। हमने कहा आप चुप रह जा, वो करे कि न चुप रह जाएंगे तो वो कहेंगे कि इतने तो हम उतरे से थकार के आए, दो प्रेम की बोल नहीं बोल सकत जय दिक्कत, तो चुप भी नहीं रह सकते, बोलना पड़ेगा। हमने कहा बात तो कठिन बात कह रहे। मैंने कहा अच्छा ये बताओ दो चार बातें तो सहन हो जाती। कहने महाराज दो चार बातें तो सहन हो जाती हैं, फिर उसके बाद नहीं सहन होती। तो हमने कहा सुनो ऐसा किया करो, जब दो चार बातें कह गई मैं तो उसके बाद कहना कि अब देखो हाथ मुंह धो लो और जितनी रह गई हूं सो बाद में रोटी खा के कह दी। अब क्या कर सकते हो, अब हम भी थक गए सुना सुना, अब आप भी थक गए हुई है, हाथ में धो लो रोटी खा लो फिर कह लियो और जितनी रह गई, हम मना नहीं कर रहे कह लियो बस। वो तो उस दिन उनने अपना ये हमारा प्रैक्टिकल और कर ही लिया, बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। और शाम को जैसे ही आया और वो तो रोज का क्रम था कि कोई ना कोई गलती निकल आई और उस पर से चार बातें सुनाई, ऑफिस का गुस्सा भी उतारा, स्विन ने चार बातें सुनी और फिर धीरे से कही कि हाथ में धो लो रोटी खा लो फिर कह लियो जो कछु कहने में। अब जैसे ही ऐसा सुना सो और आग लग गई। ये सब बातें ये कहने की जरूरत है क्या, और तेजी आ गई। अब इनके समझ में नहीं आया कि ये तो उपाय कारगर तो था और असर भी समझ में आ रहा है इसका, अब ये बौखला गए हैं लेकिन इसको शांत कैसे करें। तो फौरन कह दिया कि महाराज जी ने बताओ तो जो उपाय है। अब तो बहुत वजनदार हो गया, जैसे ही ऐसा कान में गया कि महाराज जी ने बताया था, मतलब महाराज तक बात पहुंच गई है, पानी पानी हो गए, चुपचाप मुंह हाथ धो के बैठ गए, दोनों जन बैठे, दोनों ने रो लिया कि ये अपन क्या करते हैं रोज, ये बहुत अच्छा महाराज ने कह दिया है, अब अपने को आगे से उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, अगर किसी को गुस्सा आती है तो दूसरा याद कराता है कि याद है उस दिन, उतने ही में मुस्कुराहट आ जाती कि याद है वो दिन जो हमने कहा था कि अब शांत रह जाओ रोटी जी लो, उतने ही बार कहना पड़ता कि याद है वो दिन और बस मुस्कुराहट आ जाती और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। भैया हम तो ये सोचते हैं कि पता नहीं लोग विवाह काहे के लिए करते हैं, जीवन साथी चुनते हैं काहे के लिए चुनते हैं, अपनी कषायों को मंद करने के लिए चुनना चाहिए, ऐसा जो कि मेरी कषायें भड़के तो उसको संभाल लेवे, मैं संसार में भटकने लगूं तो हाथ पकड़ लेवे कि क्या करते हो आप। लेकिन ये सब चीजें खत्म हो गई, जो मुझे संसार के सुख देवे वो मेरा जीवन साथी, जो मुझे संसार के दुखों से बचा लेवे वो नहीं, जो संसार के खूब सुख के साधन जुटावे, रोज गाड़ी में बिठार के घूम भी लुआ जावे वो जीवन साथी सच्चा है। अब आज की तो परिभाषा यही है हमारे लिए, अच्छे से अच्छे पहनने ओढ़ने के लगाने के और सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री ज्ञान के देवे वो जीवन साथी श्रेष्ठ है। नहीं भैया मैं तो यही मानता हूं कि सच्चा साथी वही है जो हमारे अगर कषाय का उदय आ जावे तो उसको मंद करे और कभी उसको आ जावे तो हम उसके आगे बढ़ करके कहें कि नहीं इसके लिए थोड़ी हमने जीवन जीना शुरू किया था, एक साथ जी रहे हैं तो अब संभालो एक दूसरे को, जहां कोई गिरने लगे तो उसको संभाल लो। ये गिरना क्या है, यही तो गिरना है, कषायों में गिर जाना सबसे बड़ा गिरना है, जमीन पे गिर जाने वाला तो अपने आप भी उठ जाता है, कषाय में गिरने वाले को उठाने वाला भी चाहिए साथ में एक, तो ऐसा कुछ करिएगा तो भी संभव है। अभिषेक इंद्र सारथी आदि और पिछी कमंडल की बोली लगाकर पैसा इकट्ठे करने का आगम्य विधान है। नहीं भैया ऐसा तो कोई विधान नहीं है, लेकिन क्या करें अब अपन का काम नहीं चलता, अगर अपन बिना बोली के दान इत्यादि दे दे रहे तो कहीं को बोली लगाना पड़े, और बोली इसमें भी लगाना पड़ती थी कि भैया आप इतने लोग बैठे हैं कौन से कहें कि तुम आ जाओ अभिषेक कर दो, किससे कहें बताइए, जिसको बुला लेंगे तो वही कहेंगे कि ये भाई भतीजा बात हो गया भैया उनकी पहचान है से उनको बुला लिया, अब कोई तो आवे तो कहते भैया जो जितना त्याग करे वही आ जावे, चलो तो उस त्याग करने वाले को अच्छा अब अगर अपन ये कहें कि कई बार करके देखा ये कि ब्रतमूल ले लो, तो ब्रतमूल लेने वाले उस समय बहुत खड़े हो जाते फिर, और उनमें से फिर मुश्किल हो जाती। आगरा में जमन कल्याणक के दिन जो है पंडाल में आग लगने से पूरा पंडाल जल गया। अब लेकिन चार लोग खड़े हो गए नया पंडाल बनाने के लिए, अब कॉम्पिटिशन, हम देंगे 10 लाख, हम वो कह रहे हम देंगे 10 लाख, उन्होंने कहा हम देंगे 10 लाख, अब 10-10 लाख सब दे रहे हैं तुरंत के तुरंत, अब क्या करें। तो जिसका सत्य व्यसन का त्याग होगा, उन्होंने कहा हम चारों का सत्य व्यसन का त्याग, हमने कहा भैया तो संयम का व्रत ले लो, उन्होंने कहा हमारा आज ही नहीं संयम, उन्होंने कहा हमारा 20-25 दिन। अरे भैया इतना मुश्किल हुई, डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया, ये डिसाइड नहीं हो पाता, इसलिए अपन को ऐसा करना पड़ता है, और कोई वजह नहीं। कहीं आगम में नहीं लिखा कि ऐसे करके पैसे इकट्ठे करो, लेकिन कैसे करें इसके लिए कोई उपाय तो खोजना चाहिए। ये कहना बहुत आसान है कि बोली बंद कर दो, ठीक है भैया ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कैसे हम धर्म ध्यान के लायक और ये सब आयोजन करने के लिए कहां से पैसा लाएं, उसका तो कोई ना कोई तो हां व्यवस्था ऐसी करो जिससे कि संकलेश ना हो। जैसे हमने बोली की प्रक्रिया बताई थी कि जो बोले जितने बोले उतने दे दे, फिर देखो कितना मजा आता। 10 रुपए से शुरू हुई तो जिसने 10 बोले वो 10 भी देवे, जिसने 25 बोले 25, जिसने 500 बोले वो 500 भी देवे, और 500 वाले ने फिर 1000 बोले तो फिर 1000 भी देवे वो, और उसकी बोली उसने ली 10,000 में तो बीच बीच में उसने कई बार बोले हैं अगर, तो जितनी बार उसने बोले उतनी बार देवे, जितनी बार मुझसे वचन निकल गया कि इतने देता हूं बस दे दिए समझो, फिर देखो आप फिर आनंद भी आएगा। तो कुछ ना कुछ इस तरह उसमें कर लीजिएगा। देखो परंपराओं को तोड़ने की परंपरा नहीं बनानी चाहिए, अपन लोग जो है परंपराओं को तोड़ने की परंपरा नहीं, परंपरा में कोई खामी रह जाए तो उसको दूर कर दो, उसको दुरुस्त कर दो, पर परंपरा को तो अपन को, क्योंकि जिन लोगों ने बनाई होगी उनने कुछ तो सोच के बनाई होगी उसको, हम संयम का पालन करने पर एक मंदिर बनवाने के बराबर पुण्य लाभ मिलता है क्या? एक से भी ज्यादा। हां पांचों इंद्रियों का संयम जिसने धारण कर लिया उसके लिए तो कितना पुण्य का अर्जन होगा। विनोबा की मां ने एक बार, विनोबा वगैरह बैठी थी, 11 साल के थे विनोबा, उनके छोटे भाई बालकोबा फिर शिवा, हां 11 साल 9 साल 7 साल के थे ये तीनों भाई बैठे थे, और उनकी मां ने कहा कि तुम क्या जानो क्या होता है व्रत लेना, अगर मैं तुम्हारे जैसी पुरुष होती तो आजीवन व्रत लेती संयम का, और मेरी 49 पीढ़ियां तर जाती, ऐसा उनके यहां लिखा होगा 49 पीढ़ी तर गई। तो विनोबा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मेरा आजीवन ब्रह्मचर्य, तीनों भाइयों ने आजीवन ब्रह्मचर्य उसी समय ले लिया था, तो ये बहुत बड़ा बड़ा व्रत कहलाता भैया। महाराज ने एक दिन कहानी सुनाई थी अति धारा व्रत की, वही तो है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर नहीं बनवाएंगे, अगर अपने पास धन संपत्ति है तो उसका सदुपयोग भी करना चाहिए, उसमें भी उतना ही पुण्य का अर्जन होता है, क्योंकि पता नहीं मंदिर के लिए आकर के दर्शन करके किसको सम्यक दर्शन हो जाएगा, पूरे पैसा वसूल हो गए। हाँ अगर किसी ने दर्शन करके ना और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो बताओ एक जीव का तो कल्याण ही हो गया, तो कमती बात नहीं है। मूर्ति रखवाना इसलिए बहुत विशेष माना जाता था कि पता नहीं किस मूर्ति से किसको सम्यक दर्शन, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मूर्ति से सबको सम्यक दर्शन हो, अलग अलग प्रतिभाओं के दर्शन से लोगों को सम्यक दर्शन हो सकता, वो जिन बिंद निमित्त है। समाधि मरण लेने पर मंदिर में कलशा चढ़ाने के बराबर, हाँ ऐसा ही ये तो लिखा है उसमें कि जैसे मंदिर पर कलशा चढ़ाते हैं ऐसे मानव जीवन के ऊपर कलशा रख दिया हो, समाधि मरण जिसने कर लिया तो मानो जीवन पर कलसा, मणि मणि कलसा धरे हैं, ऐसा करके आता है उसमें। जैसे अपने मंदिर पर कलशा रखते हैं वैसे जीवन में अगर आपने समाधि मरण कर लिया तो आपने कलश मान लो रख दिया है। जब किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो कि उसके व्रतादि के पालन में दोष लगने की आशंका हो तो वो व्रतों की और संयम की रक्षा के लिए ज्ञानपूर्वक शरीर का त्याग कर देता है, जिसके सामने अपने संयम तपादि साधनों के निर्दोष पालन करने की आशंका नहीं है उनके लिए समाधि मरण तो उचित नहीं है। अच्छा आपका प्रश्न ऐसा है, उपसर्गे दुर्विक्षे जलसिरुजायाम चनि प्रतिकारे धर्माय तन विमोचनम आहु संलेखना मारिया, संलेखना की परिभाषा ही ये बताई है भैया कि उपसर्ग आ जावे, अब प्राण संकट में शेर सामने आ गया, मरण तो निश्चित ही है, तब उस समय संलेखना ले लो। दुर्विक्षे, दुर्विक्ष पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, वर्षों वर्षों खाने को नहीं है, समाधि मरण ले लिया, क्योंकि आप अब शरीर तो जाने वाला है, अब अपने व्रतों की रक्षा कर लो। उपसर्ग दुर्भिक्ष जरसी रुजायाम क्या, अगर बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे के बाद तो मरण निश्चित है। तो बुढ़ापा आ गया, आंख से दिखता नहीं है, पैर काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करता, आप छोड़ो आसक्ति भोजन की और शरीर की आसक्ति छोड़ो, शरीर जाने वाला है उसको आराम से जाने दो, पकड़े मत रहो। और फिर कहते ऐसा रोग हो जाए जो असाध्य है, अब कैंसर हो गया, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा हो गया। हाँ आप उल्टा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, कैंसर हो गया, डिक्लेयर हो गया कि मरना है, दो तीन साल लगेंगे, और दो तीन साल में जब मरने का निश्चित हो गया तो आराम से जी लो ना तीन साल, मरने से पहले कहे को मरो। और अभी तक तो ऊट पटांग जीते आए थे, अब तो जरा ढंग से जिएंगे क्योंकि तीन ही साल रह गए हैं, सोचते तभी तो बहुत जीना है, फिर जी लेंगे ढंग से, नहीं अब तो तीन साल है तो ढंग से जियो। गीता बहन थी एक विनोबा के आश्रम में, उनको मालूम हो गया कि कैंसर हो गया, उन्होंने कहा बापू सब चीजों का त्याग, सारे परिग्रह का त्याग, अस्वाद व्रत सब व्रत ले लिए उन्होंने, और अब क्या खाऊं, तो सिर्फ उबली हुई सब्जी और उबला हुआ पाली पानी पीऊं, उबली सब्जी खाऊं जब तक जीवन रहेगा तब तक, और एक पेड़ के नीचे अपने हाथ से झोपड़ी बनाकर नीम के पेड़ के नीचे रहने लगी, कुल्हड़ में पानी पीती थी बस, और कोई परिग्रह नहीं, सिर्फ बस एक साड़ी रख ली अपने लिए, रंगो 15 साल तक जी, 15 साल कैंसर वैंसर भी, उसको भी कैंसर हो गया, कैंसर को कैंसर हो गया, वो जो कि मरने का तय था उनका, फिर लोगों ने कहा 3 साल बाद कि अब तो आपका ठीक हो गया, आप चले चलो, बोले नहीं अब तो मैंने जीवन भर के लिए नियम दिया तो जीवन भर का नियम है। तो भैया अपन हड़बड़ी में जल्दी मर जाते हैं, हाँ तो ये संलेखना जो है हड़बड़ी में मरने का मामला नहीं है, मरण उपस्थित हो गया तो शांति से मर रहे, जैसे सनसेट हो जाता है धीरे 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 करके डूब जाता है, ऐसे धीरे धीरे करके, जैसे वीणा के तार जब संगीत अपने चरम पर पहुंचता है तो अपने आप झन से टूट जाते हैं, ऐसे ही जिसने जीवन भर अपने जीवन का आनंद लिया है वो मरण के समय हर्षित होकर के अपने शरीर को छोड़ देता है, उसका नाम संलेखना है। आप क्या समझते हैं, संलेखना इज नॉट सुसाइड। शरीर और मन से अशक्त हो जाने पर मानव की बाहरी आंतरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, इस अवस्था में क्या करें। शरीर से तो कोई भी अशक्त कितना भी रहे, अगर मन सशक्त है तो फिर भैया सब कर सकते हैं, और मन अगर हार गया है तो फिर कोई उपाय नहीं है। हम तो हमेशा यही देखते हैं, और अब तो महाराज हमारे साथ में हैं, सो महाराज को देख देख करके और अपन को तो उत्साह और ज्यादा बढ़ता है। कह रहे जब 75-76 साल में 8-8 बच्चों के पिता होने के बावजूद भी जो है, और अपने जीवन के कल्याण के लिए उत्सुक हैं कि 3 बजे हैं तो 5 मिनट पहले और 3 बजने के पहले उठ जाते हैं, और उठते ही साथ हम आपस में नमस्तु करते हैं और शुरू कर देते हैं अपने दिन की यात्रा। और ऐसे लोग भी हमने देखे हैं 40-40 साल के 8 बजे सवेरे तक उठ पा रहे हैं। क्या है ये तो मन के हारे हार है और कुछ नहीं है। शरीर तो अपनी जगह पर है भैया, एक बार भी हार करके पानी पी करके रहा जाता है और 24 घंटे काम किया जा सकता है और 10-10 दफे भी खा करके और सोया जा सकता है। इसलिए शरीर की शिथिलता की चर्चा तो मेरे से मत करो आप, शरीर तो हमेशा से ऐसा ही मिलेगा, वज्रभृषभ नाराज सहनन मिलेगा तभी कल्याण होगा, ऐसा नहीं है सड़े शरीर से भी कल्याण हो सकता, मन सड़ा नहीं होना चाहिए, मन तो बढ़िया होना चाहिए, चंगा होना चाहिए। हाँ सीधी सीधी बात, आत्मा में ताकत है तो सब काम सब सगट सकता है। अभाग विसर्गम बपुषा निरूपियंतम, इसका अर्थ बताइएगा। अभाग मतलब जो चुप रह करके, बपुषा निरूपियंतम अपने शरीर से ही मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे, ऐसे आचार्य का लक्षण लिखा है पूज्यपाद स्वामी ने, सर्वार सिद्धि पढ़िएगा उसमें, प्रायोगिक विज्ञान की पुस्तक में दूध को मांसाहार में शामिल किया है, कृपया इसका जूलॉजिकल खंडन बता दीजिएगा। जूलॉजिकली जो है बायोलॉजिकली जिसको कहिएगा, वो बहुत आसान है, अब लोग ऐसा मानने लगे। देखो तो समय कैसा चल रहा है, अंडे को तो शाकाहार कह रहे हैं और दूध को मांसाहार कह रहे हैं, कैसी बुद्धि है, ये बुद्धि तो है ही, विवेक नहीं है, बुद्धि है। अब देखो इसका उत्तर बायोलॉजिकली अगर देखें, अंडे में ठीक है अनफर्टाइल एग भी होता है और एक फर्टाइल एग होता है, जिसमें से चूजा निकलेगा और जिसमें से चूजा नहीं निकलेगा, दोनों प्रकार के अंडे हैं, लेकिन जिसमें से चूजा नहीं निकलेगा उस पर अगर स्पर्म्स डाल दिए जाएं मुर्गे के और फिर उसको इंक्यूबेटर में रख दिया जाए, 21 दिन के अंदर उसमें से चूजा निकल आएगा। लेकिन अगर दूध में स्पर्म्स डाल दिए जाए, इंक्यूबेटर में रख दिया जाए, तो दूध में से कोई गाय नहीं निकलती, निकलती क्या उसमें से? मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं, अब मुझे जवाब दीजिएगा इसका, साइंस वाले लोग जवाब दीजिएगा। दूध जो है वो किसी गाय के बेटे को जन्म देने के लिए नहीं है, जन्मे हुए बेटे के पालन पोषण करने के लिए है दूध। अंडा तो जो है उसमें से एक जीव के जन्म होने के लिए उस अपने मुर्गी ने, वो मुर्गी की ओवरी है, जैसे हम लोग मां के पेट में जन्म लेते हैं वैसे ही वो मुर्गी का बेटा अपनी मां के पेट में नहीं, वो है उसका पेट, वो अंडा उसमें जन्म लेता। अंडा बिना जीव की तो हो ही नहीं सकता, 15,000 छेद होते हैं अंडे में भाई, आपके रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए उस जीव के, उस अंडे में। तो अंडा तो मांसाहार है ही, उसमें तो जो मैंने जैसा ये समझ लीजिएगा कि जैसा मां के पेट में और हमारे पैदा होने के लिए जो रस बनता है वैसा ही उस अंडे में भरा हुआ है, और वो पूरा मांस का एक पिंड है, उसको तो शाकाहार कह रहे हैं। और दूध देखना, दूध उसी अलग कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड की कैपिलरीज हैं वो अलग हैं और मिल्क की कैपिलरीज अलग हैं। मिल्क जो है वो हमारे शरीर का एक अनिवार्य अवयव नहीं है, मैमल्स में ही होता है सिर्फ, और वो भी जिसके भीतर मातृत्व उत्पन्न होगा उसी के भीतर वो सिक्रीशन होगा, बहुत थोड़े से टाइम पीरियड के लिए अपने बेटे के लिए ही वो मैमल्स में सिक्रीशन होता है। दूध के नहीं निकलने पर गाय को तकलीफ हो सकती है, होती ही है, दूध निकल जाने पर उसे शांति होती है, वो उसके लिए बाधक है। ये तो बहुत सामान्य से कारण है। मैं आपसे ये कहूं कि जैसे ब्लड या कि जैसे एग में शेल्स होते हैं, वैसे शेल्स मिल्क में नहीं होते, और जहां शेल्स हैं वहां लाइफ है, और जहां शेल्स नहीं है वहां कोई लाइफ नहीं है। दूध में कोई शेल नहीं होता, शेल समझते हैं सी डबल एल, कोई भी कोशिका नहीं होती दूध में, ना डीएनए होता है, शेल्स ही नहीं है तो डीएनए कहां से होगा, और जिसमें शेल्स हैं डीएनए है उसमें तो पूरा लाइफ साइकिल है। बॉटनी के हिसाब से भी देखा जाए तो जीव रहित है दूध, ये ध्यान रखिएगा। बाहर से उसमें अंतर्मुहूर्त में जीव राशि पैदा हो जाती कंटामिनेशन, इसलिए 48 मिनट से पहले छान करके उसे गर्म कर लिया जाता ताकि उसमें कोई जीव राशि उत्पन्न ना हो। दूध अपने आप में निर्जीव ही होता है। अच्छा, कभी भी देखिएगा अगर अपने शरीर की में से ब्लड निकल जाए, तो ब्लड और मिल्क अगर एक सा है तो फिर ब्लड की बॉटल चलाने की जगह तो मिल्क की बॉटल चला दो ना, ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि मिल्क बिल्कुल अलग चीज है, मिल्क के प्रोटीन को कैल्शियम कहते हैं और ब्लड के प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं और अंडे के प्रोटीन को अल्बुमिन कहते हैं, तीनों के प्रोटीन अलग अलग हैं। आप और भी बहुत सा पेपर पब्लिश हुआ है बहुत मेहनत करके, आप इसको देख लीजिएगा। ऐसी बातें बहुत फैलाई जा रही हैं, मिथ्या बातें हैं, अपन को इन पर विचार करना चाहिए और बचना चाहिए। दूध जो है वो शाकाहारी है भैया, प्योर, कहीं इतना जरूर है कि वो एनिमल प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं, इतना तो मैं मानता हूं कि वो पशु से प्राप्त हुआ है और है, वनस्पति जन्य नहीं है, इतना तो ठीक है। लेकिन प्राणी जो प्राणी जा रहा है वो सब मांसाहार है, ऐसा कहां लिखा हूं? यदि हमेशा पूजा करने का नियम हो, देवदर्शन का हो, कभी ऐसी जगह रुकना पड़े जहां मंदिर ना हो, जाओ ही मत वहां पर जहां मंदिर ना हो, सबसे अच्छा। पहले के लोग सवेरे 5 बजे मंदिर के दर्शन करके जाएंगे और दूसरे दिन भोजनों तक पहुंचे ही जाएंगे, इतनी यात्रा करेंगे, नहीं तो बीच में ब्रेक करेंगे, कटनी तक जे हैं वो तो जल्दी से दर्शन करके फिर भोजन वोजन करके फिर आगे की यात्रा कर दूसरी बदल लें गाड़ी। हां, जहां मंदिर नहीं हुआ जाऊंगे नहीं, ऐसा नियम ले लो। एक है विदिशा में, उन्होंने बैंक की सर्विस है, उनका ट्रांसफर होता है, वो पहले पता कर लेते हैं कि यहां मंदिर है क्या, मंदिर नहीं है तो सबसे पहले अपना इस्तीफा लिख के धर देते कि जी इस्तीफा ले लो, उतरे तो नहीं जा रहे हम, क्यों नहीं जा रहे आप, मंदिर नहीं हमारा वहां, हम नहीं जाएंगे, तुम्हें नौकरी करवाने तो करवा लो, नहीं करवाने तो जो धरो इस्तीफा, परचून की दुकान खोल ले हैं, खोमचा बेच के अपनी कमाई कर ले हैं 4 पैसा की, मगर उतने जे कमावे जहां मंदिर ने हुई है। अब सब जने भग रहे विदेश, कमावे भग रहे, आसाम जा रहे, डीमापुर जा रहे, दुनिया भर में, मंदिर मिले चाहे नहीं मिले, बच्चों को संस्कार हो चाहे नहीं हो, अपनी जिंदगी बर्बाद करी और आने वाली पीढ़ी की लव करी जिंदगी बर्बाद, और एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी की, का मंदिर के संस्कार ही नहीं डाले, जिससे के निधत्ति निकाचित कर्मों का क्षय होना था उस जिन बिंब दर्शन से आपने वंचित कर दिया, स्वयं को भी हो दूसरे को, काय खिलाने चार पैसा खिलाने, कछु ऐसे थोड़ी आए कि तुम ही अकेले कमा रहे, सब दुनिया अपना जीवन जी लेते बिना कमाए भी जी लेती है, हम तो ऐसे ही बोल देते फिर भाषा अच्छी लगे तो नहीं लगे बुराई तो मान जाए एक आध बार सो अच्छो रहे कोई बुराई नहीं मान रहा कछु लग तो जा थोड़ी बुरा उपगुण आनंद किसे कहते हैं और स्थितिकरण, अरे आप सुबह की क्लास में नहीं है कोई बात नहीं, अपने साधर्मी जनों के या मोक्ष मार्ग पर चलने वालों के दोष दिखाई पड़ने पर उन दोषों को किसी से नहीं कहना, उन्हें ढक लेना, यह उपगुहन कहलाता है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला शक्त जनाश्रयाम वाचताम यत् परार्जन्ति तत् वदन्ति उपगुहनम्। मार्ग तो मोक्ष का निर्मल है लेकिन चलने वाला अज्ञानी है, अशक्त है, उसके द्वारा अगर कोई दोष लग जाए तो उसका परमार्जन करना, उसे फैलाना नहीं, यह उपगुहन कहलाता। और स्थितिकरण करना कोई सम्यक दर्शन से, कोई ज्ञान से, कोई आचरण से, और अगर विचलित हो जावे तो उसको पुनः अपने मार्ग में स्थित कर देना, स्वयं को भी। जैसे अपन ने क्रोध नहीं करने का नियम लिया और क्रोध कर लिया तो फिर अपने को पुनः क्षमा भाव धारण कर लेना, यह स्थितिकरण कहलाएगा। इस तरह उपगुहन और स्थितिकरण है। चंदन माथे पर लगाने से क्या लाभ होता है? उससे याद बनी रहती है कि ये चंदन कहां से लगाया, लॉ ऑफ एसोसिएशन। हाँ, बहुत बड़ा नियम है साइकोलॉजी का, लॉ ऑफ एसोसिएशन। हम लोग चीजों से जुड़ जाते हैं उनसे। एक लॉयर थे शायद हरि सिंह गौर के बारे में है, वो जब उधर कोर्ट में जाकर के और बहस करते थे तो उनका कोर्ट के तीसरे बटन पर वो ऐसे हाथ उनका घूमता रहता था और फिर वे कोई उनसे फिर जीत नहीं सकता था। एक व्यक्ति ने वॉच कर लिया तो उन्होंने उनके जो है सोफर को जो कोट उनको पहनाता था, जो उनका कोट लेके आता था, उससे वो तीसरा नंबर का बटन तोड़वा दिया, देखना मजा। और वो उस कोट को लेके पहुंच गए और वहां उनने पहन करके जैसे ही बहस के लिए खड़े हुए और उनका हाथ गया इधर तो वो कोट में से बटन गायब था, वो पसीने पसीने हो गए बिल्कुल, और वे सारे उन भूल गए क्या लॉजिक देना था, और ऐसे लॉजिक दिए जो कि उनके क्लाइंट के विपक्ष में जाते थे और केस हारने को हो गए। मुंशी ने देखा कि बात क्या हो गई, मुंशी का ध्यान चला गया कि ये तो किसी ने कारस्तानी करके कोर्ट बदल दिया है। मुंशी फौरन गया और उसने जो है दूसरा कोर्ट, साहब ठहरिएगा आप ये कोर्ट पहनिएगा, उन्होंने दूसरा कोट पहना और दूसरा कोट पहन के फिर से खड़े हो गए और फिर मालूम क्या कहा कि योर ऑनर अभी तक मैंने जो कुछ कहा वो मेरे क्लाइंट के विपक्ष का वकील कहना चाहेगा, अब मैं उन सब बातों का जवाब देता हूं। और उन्होंने अपने ही दिए गए पॉइंट को फिर काट करके अपने क्लाइंट को जितना दिया था। ये लॉ ऑफ एसोसिएशन का बहुत परफेक्ट, उनके उस बटन से इतना जुड़ाव हो गया था कि बटन को वो घुमाते थे और उनके भीतर जो है जैसे कि सब घूमने लगा। इतना ये तिलक ऐसे लगा लिया, जब जब भी इधर ध्यान चला जाएगा, कहां गए थे, भगवान के मंदिर गए, भगवान की याद आ गई, सारे पाप के बीच में भी भगवान की याद आ गई। इतना महत्वपूर्ण था ये तिलक पहले कि जाओ पहले चंदन लगा के आओ मंदिर में से, तब खाना देंगे तुम्हारे लिए, दिन भर लगा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि छुटा लिया। और वो चंदन ये हमारा आज्ञा चक्र है दोनों के बीच में, इस आज्ञा चक्र को शीतलता देता है वो चंदन, और इस पर कोई भी हमें अपने वश में नहीं कर सकता। बच्चे लोग करते ना ऐसे करते हैं तो झंझनी होने लगती है दूसरे को, ऐसे उंगली अपन खुद भी करें अगर ऐसे थोड़ा सा तो झंझनाटन, वो आज्ञा चक्र है उस पर। पहले के लोग तो इसीलिए मां लोगों को बहनों को ब्याह के बाद इतनी बड़ी बेंदी लगा दी, हाँ वो पूरा आज्ञा चक्र ढक गया, किसी का वश नहीं चलेगा, ना कोई व्यंतर व्यंतर का बस चल सकता ना किसी व्यक्ति का, आंख स्लिप हो जाएगी उसकी अगर वो कंसंट्रेशन करके बस में वशीकरण चलाएगा तो, नहीं हो सकता, इतना हार्ड भीतर उसकी रेज नहीं जा सकती, आपकी नजर वजन नहीं लग सकती उसको। अरे पुराने लोग थे, पुराने ही थे, हाँ अब तो फैशन के चक्कर में और सेफ्टी कम है और फैशन ही फैशन बहुत है, शोबाजी है, पहले परफेक्टनेस थी, शिव तो था ही, सौंदर्य बोध भी था, लेकिन सौंदर्य के साथ साथ जो है और अपने जीवन की संरक्षण और सुरक्षा का ध्यान भी था। अब वो सारी चीजें, गरीब किसको और अमीर किसको कहें, दो टाइम रोटी मिले और रात को आराम से सो जावे बगैर चिंता के, उसको अमीर कहेंगे। पैसा होने के बाद जिसको रोटी खाना और रात को नींद ना आए वो गरीब है। आपका क्या सोच है, हम आपके सोच के साथ हैं उसमें क्या? हमारा भी यही सोच है कि वास्तव में तो वही आदमी अमीर है। हम तो ये कहते हैं कि जो जितना संतुष्ट है वो उतना अमीर है। एक फकीर आदमी था तो वो कहता था कि मेरे पास एक सोने का सिक्का है, मैं सबसे गरीब आदमी को दूंगा उसको। तो बहुत लोग आए कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे दे दो वो सोने का सिक्का। उसने किसी को नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ कि एक राजा की सवारी निकली, राजा उस पर बैठा हुआ था बड़ी मसनत बिछा करके और हीरे जवाहरात उसमें लटक रहे थे, और पूछा कि ये राजा साहब कहां जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं क्या? बोले घूमने नहीं जा रहे हैं, दूसरे देश पर चढ़ाई करके उस देश को हड़पने जा रहे हैं। तो बोले इनका इतना बड़ा देश पहले से है, फिर इनको क्या जरूरत? बोले यही तो बात है, ये अपने राज्य का विस्तार करने जा रहे हैं। अरे तो उसने वहीं से बहुत दूर से और जोर से सिक्का उछाल के फेंका तो उसके पास गिरा आकर के राजा के पास। तो राजा ने कहा कि अरे तेरे को दिखता नहीं है मैं इतना अमीर आदमी हूं और मेरे को तू सिक्का दे रहा है? तो उस आदमी ने मालूम क्या कहा कि जिसकी जितनी इच्छाएं हैं वो उतने ही ज्यादा गरीब है, भिखारी है, मांग रहा है। तो एक एक चीज मांग रहा है, वो गरीब है तभी तो मांग रहा है, अब कितना बड़ा राज्य फिर भी और चाहिए। तो हमने आप ही को सबसे गरीब मान के सिक्का दे दिया। ऐसे ही है भैया,
किसी के मरने पर मालूम पड़ता है कि वो था और अभी तक जिंदा था। ये तो बहुत पुरानी कविता है मेरी, सन 82-83 के लगभग की है। ये आपकी पुस्तक पगडंडी में से ली है, इसका अर्थ बता दें। अच्छा, क्या होता है, एक कन्फ्यूशियस था, बहुत बड़ा दार्शनिक था, वो बड़ा मजाकिया किस्म का था, मजे मजे में वो और लोगों को दर्शन सिखा देता था। तो एक बार जो है एक व्यक्ति के पास गया रास्ते में और उसने देख लिया कि इनके दांत वांत तो है नहीं, तो कहता मुंह खोलो। तो मुंह खुलवा लिया उसका और देखा उसके भीतर। उसने कहा क्या देख रहे हो? बोले ये देख रहा हूं कि जो बाद में आए थे वो पहले कैसे चले गए और जो पहले से वे है वो बात तक क्यों बनी हुई है। आश्चर्य पड़ा वो कि ऐसी कौन सी चीज दिख गई इसको मेरे भीतर। तो उसने कहा कि तुम्हारे दांत बाद में आए थे लेकिन पहले चले गए, और ये जीभ तो पहले से थी और अभी तक है, इसका राज क्या है? ऐसे वो हंसी हंसी में सिखाता था कि जो कठोर है उसको पहले जाना पड़ता है, जो मुलायम है वो बाद तक रहता है। उसी से ये रिलेटेड है। एक और वो घटना बताता है कि जब तक हमारे 32 दांत हैं, रोज रोज क्या हम हर एक दांत को देखते हैं कि टूट तो नहीं गया? छू करके देखते क्या 32ों के, गिन करके कि 32 ही है पूरे के नहीं? और जो अंदना एक आठ टूट जाए तो जीव दिन भर होता ही तही जाती। इसका मतलब क्या है? जब तक था तब तक तो उसका कोई ख्याल नहीं, और जब नहीं है तब बार बार ख्याल। अभाव में कीमत मालूम पड़ती है, सद्भाव में तो भूले रहते हैं हम। ये कहना चाह रहे हैं कि किसी के मरने के बाद मालूम पड़ता है कि अरे वो था और जिंदा था और मैं जिंदगी भर उससे मिला नहीं, आज मरने पर मातम पुरसी के लिए और कंधा देने के लिए जा रहा हूं, जीवन भर सहारा उसे कभी नहीं दिया। मरने पर हम पहुंच जाते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। इतनी सी चार लाइनों का कुल इतना ही अर्थ था भैया, और कोई विशेष उसमें। जिस समय पंच परमेश्वरी का ध्यान करते हैं, जैसे एक पद ले लिया नमो अरिहंतानम, तो ये कहने पर किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, कैसा देखना चाहिए, किस प्रकार की अनुभूति होनी चाहिए, कृपया बताइएगा। देखो ऐसा है, पिंडस्थ ध्यान होता है पदस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान होता पिंडस्थ ध्यान होता है, रूपस्थ रूपातीत ध्यान होता है। रूपातीत ध्यान तो आज संभव नहीं है, विचारात्मक हो सकता है लेकिन ध्यानात्मक तो बहुत कठिन है। सिद्धों के स्वरूप का विचार करना, और मेरा भी वैसा ही स्वरूप है, ऐसा विचार कर लेना, ये रूपातीत ध्यान कहलाता है। लेकिन अनुभूति तो अपन को सिद्धों के जैसी होती नहीं,
तो अपने को तो सिर्फ पदस्थ ध्यान हो सकता, कोई एक पद ले लिया जैसे नमो अरिहंतान, और हम नमो अरिहंतानम पर विचार कर रहे हैं, हमारी एकाग्रता नमो अरिहंतानम पर ही बनी रहे, इसके लिए हम विचार करते हैं कि अरहंतों का क्या स्वरूप है, अनंत चतुष्टय से युक्त है वे, अनंत चतुष्टय उन्हें किन कर्मों के अभाव में प्राप्त होते हैं, वे कर्म किस स्वभाव वाले हैं, और उन कर्मों का बंध उदय और सत्व कहां कहां किस तरह से होता है, मैं कैसे उनके बंध को रोकूं, मैं उनके उदय में कैसे जो है अपने परिणाम रखूं जिससे कि मैं उन कर्मों का क्षय करके अरहंत अवस्था को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि मैं भी अरहंत बनने की योग्यता अपने भीतर अपनी आत्मा में रखता हूं। ऐसे जो है अब अरहंत भगवान के चार घातिया कर्मों का नाश हुआ है, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, अब ज्ञानावरण के पांच भेद हैं, दर्शनावरण के नौ भेद हैं, और मोहिनी के 28 भेद हैं, और अंतराय के पांच भेद हैं, इन सब का लक्षण क्या है, इन सब का बंध और उदय और सत्व कैसा कैसा होता है, ये सब जो है विचार करना, और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होने पर उनको किस तरह अपने आत्मा की अनुभूति होती होगी, ऐसा जो है जैसा ग्रंथों में लिखा है वैसी कल्पना करते हैं, ये पदस्थ ध्यान है। फिर बाद में धार पिंडस्थ ध्यान में, पिंडस्थ में जो है भगवान के कमलासन पर बैठे हुए और समोषरण में उनके स्वरूप का विचार करते हैं, फिर पांच प्रकार की जो धारणाएं हैं उन सबको करते हैं, ये क्रम क्रम से जो है इस तरह की पूरी प्रक्रिया है भैया, वो इतनी सहज नहीं है, पर आप तो इस तरह से इतना जितना ज्ञान होगा उतना अधिक जो है वो आप चिंतन कर सकेंगे, और चिंतन की निरंतर जो प्रक्रिया है वही हमें एकाग्रता भी ला देती है, उसी एकाग्रता का नाम ध्यान है। और जब हम पांच इंद्रियों के विषयों से विमुख हो जाते हैं और मन को एक जगह एकाग्र कर देते हैं तो उसी को हम आत्मानुभूति कह लेते हैं, और क्या, नहीं तो हमको हमेशा जो है अपने शरीर और मन और अपने इंद्रियों के विषयों की अनुभूति होती रहती, उनसे जब हम विराम ले लेते हैं और मन में किसी भी पंच परमेष्ठी वाचक कोई भी मंत्र का निरंतर स्मरण करते हैं, उसके उसका विचार करते हैं, तो उनसे हम थोड़ी देर के लिए विमुख हो जाते हैं, तब जो अनुभव होता है वही अनुभव है भैया, इससे अधिक और क्या कहूं। आत्मन्वेषी के मायने क्या होता है, आत्मा का अन्वेषण करने वाले, आत्मा को खोजने वाले, या कि आत्मा का अनुभव करने वाले को आत्मन्वेषी कहते हैं, जिसने आत्मा को खोज लिया है या कि जो आत्मा की खोज में निकला है, अर्थात आत्मा की खोज, कहीं जाना तो है नहीं खोजने के लिए, अपने भीतर ही आत्मलीन होना है, तो आत्मलीनता कहें, आत्मा की खोज कहें, आत्मान्वेषण कहें, बात तो एक ही है, आत्मानुभूति भी कह सकते हैं। आज प्रातः के प्रवचन में संसार भाव और लोक भावनाओं को आपने समझाया, फिर से बता दीजिएगा, दोनों में अंतर है। देखो ऐसा है, संसार भावना में क्या पढ़ते हैं अपन, याद करिएगा, चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा, सब जीव संसार में सुख मान करके संसार में रहते हैं, पर संसार की वास्तविकता क्या है, संसार में सुख नहीं है, इसका मतलब जो इंद्री सुख है उसको हम सुख नहीं मानते, हम तो उस इंद्री सुख से परे जो अतिंद्री सुख है उसको ही सच्चा सुख मानते हैं, संसार में वो नहीं मिल सकता, यहां चारों गतियों में जीव अपनी अज्ञानता के कारण दुख उठाता है, है? और पंच परावर्तन करता है, जन्म मरण का सबसे बड़ा दुख है, और दुख किसी को हो या ना हो भैया, लेकिन जन्म और मरण के दो दुख तो सबके माथे लगे हुए हैं, कोई भी संसार में रहेगा, संसरणम इति संसारा आवागमनम, जहां आवागमन लगा हुआ है अर्थात जन्म और मरण का चक्र है वही तो संसार है, तो ऐसे संसार के बारे में विचार करना, और एक विचार है संसार के बारे में, अरे देखो यहां पर कभी पुत्र ही पिता हो जाता है, कभी पिता पुत्र हो जाता है, कभी माता बहन हो जाती है, यहां जितने रिश्ते हैं वे सब जो है और एक जन्म के हैं, अगले जन्म में वही सब जीव शत्रु मित्र हो जावे, अगले जन्म में और कौ मित्र जो है वो शत्रु हो जावे, ऐसा भी संसार का विचार करना ये संसार भावना है, और लोक के स्वरूप उसके आकार प्रकार का विचार करना और इस लोक को कोई बनाता मिटाता नहीं है फिर मैं क्यों इस संसार में और किसी भी चीज का कर्ता भोक्ता और स्वामी हो जाता हूं ऐसा विचार कर। कर्ता और अभिनय में क्या अंतर है समझा दीजिएगा। कर्तापना और सिर्फ अभिनय करना, यहां पर हम सिर्फ अभिनय कर रहे हैं अगर ऐसा मान करके। देखो जो एक्टर रहते हैं वे कभी कभी कुछ भी तो बन जाते हैं, हैं? जो कलाकार होते हैं लेकिन ओरिजिनली वे नहीं रहती वैसा, ना अपने को वैसा वे मानते हैं, वे बस उतनी देर जितनी देर रंग मंच पर है उतनी देर के लिए अपने को वैसा मान लेते हैं, एक मेक हो जाते हैं पर वास्तव में भी नहीं होते। हमको भी यहां पर कर्ता बन के नहीं जीना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, नहीं मैं तो सिर्फ जो है मेरा स्वभाव तो अलग ही है, मैं तो सिर्फ मनुष्यपने का अभिनय कर रहा हूं, कभी देवपने का अभिनय करता हूं, कभी नारकीपने का अभिनय करता हूं, कभी पशु और तिरंच पर्याय का अभिनय करता हूं, ये सब मेरे अनुभव हैं और अभिनय है एक तरह से मेरी, मैं क्या कहें उसको, नाटक जैसा है, जैसे नाटक में पात्र अपना अपना रोल अदा करते हैं उसी तरह मैं यहां कर रहा हूं, मैं कर्ता नहीं हूं। ये बिल्कुल समय सारजी वाली बात है भैया, ये कर्ता और अभिनय। कर्ता में तो हम उस रूप अपने को मान लेते हैं कि मैं ऐसा हूं मैं ऐसा कर रहा हूं, कहते ऐसा नहीं मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, स्वभाव तो मेरा इन सबसे अलग है। जैसे कि एक अभिनय करने वाला रोल या एक्टर जो है वो अपने को वैसा नहीं मानता जैसा कि वो अभिनय दिखाता है, ऐसा ही। अरे वाह, कहां से लिख के आए आप ये? कर्ता और धर्ता में क्या अंतर है? धर्ता मतलब धारण करना, कर्ता धर्ता बनना, जैसे कि मैं ही इस संसार का बनाने वाला और मैं ही इस संसार का रक्षा करने वाला और मैं चाहूं तो इस संसार को मिटा भी सकता हूं। कर्ता धर्ता और हर्ता, ऐसा है ना, तो कर्ता धर्ता और हर्ता बन जाते हैं अपन, नहीं लेकिन वास्तव में छेद डब्बियों से बने लोक को ना कोई बनाता है ना कोई इसकी रक्षा करता है ना कोई इसको मिटा सकता है। इतना जरूर है कि हम अपने संसार को अपने राग द्वेष से जो निर्मित करते हैं उसके कर्ता हम स्वयं हैं, हम उन राग द्वेष परिणामों को जितनी देर तक रख सकें उतनी देर तक उसकी रक्षा करें, जिस दिन हम राग द्वेष को मिटाना चाहें उस दिन हम मिटा भी सकते हैं। तो राग द्वेष रूप जो संसार है उसको हम बनाते भी हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं, उसका संहार भी कर सकते हैं, लेकिन इस सृष्टि का न कोई करता है न बनाने वाला। मुझमें इतनी बुद्धि है नहीं और मां कहती है तो मानता भी नहीं, गलती हो जाती तो दूसरे लोग कहते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है, क्या करूं। ये बात तो है सबके जीवन में होती, हमारे अपने लोग जो हमारे हितैषी हैं वे हमें कुछ समझाते हैं प्रेम से तो हमारे समझ में नहीं आती, जहां हम ठोकर खाते हैं दूसरे लोग हमारे ऊपर व्यंग करते हैं तब फिर हमें पछतावा होता कि अरे हमने अपने हितैषी की बात मान ली होती तो आज काय को ठोकर खानी पड़ती, काय को और दूसरे लोगों को उंगली उठाना पड़ती। मुझे याद है कि पिता की उंगली पकड़ के रास्ते से चले जाते थे तब सब लोग उनको नमस्कार करते थे तो मेरे से क्या कहते थे कि देखो जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया सब लोग मुझे नमस्कार क्यों करते हैं, मैंने दुकान पर बैठकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करी, सावधान रहना कि दुकान पर बैठो तो बेईमानी नहीं करना, अपनी शाख है कोई दूसरा ऐसे नहीं चलना कि कोई दूसरा उंगली उठा ले वे, वो काम नहीं करना जिससे कोई दूसरा उंगली उठा ले वे, बस इतना विवेक रखो भैया तो फिर क्या, फिर ऐसा पछतावा नहीं होगा, आपको दुख भी नहीं होगा। पूजा के मायने जो आपने सुबह बताए कृपया एक बार संक्षेप में फिर से बता दें और वीतरागते की परिभाषा ही बता दीजिएगा। संक्षेप में पूजा के मायने तो यही है भैया, तीन मायने बताए थे हैं तो बहुत सारे पर तीन अपन ध्यान में रखें कि पूजा के मायने हैं पवित्र होना, पूजा के मायने हैं मांजना, पू धातु मांजने के अर्थ में, तो मांजना किन अर्थों में, अब कोई बर्तन तो है नहीं लेकिन जैसे बर्तन को बाहर भीतर मांजा जाता है ऐसे ही अपने भीतर की और बाहर की मलिनताओं को दूर करना, पवित्र होना, मलिनताओं को दूर करना और फटकना, फटकना मतलब जो सारभूत है आत्म तत्व है उसको तो बचा लेना और बाकी से आशक्ति छोड़ देना। द्रव का विसर्जन करते हैं, शरीर भी सारभूत नहीं है, पंचेंद्रिय के विषय भी सारभूत नहीं है,
ऐसा जो है उस समय विचार आना चाहिए। तो जो निस्सार है उसे छोड़ दूं, जो सारभूत है उसे ग्रहण कर लूं। पूजा के अर्थ यही है। पूजा तो साकार से निराकार की तरफ जाने की यात्रा है। पहले हम मूर्ति का आलंबन लेते हैं, फिर उन्हीं भगवान को अपने भीतर भी बिठा लेते हैं और उनकी स्मृति बनी रहती है। कोई भी काम 24 घंटे करते हैं तो उसकी स्मृति बनी रहे। ये पूजा का संक्षेप में यही अर्थ है भैया। और वीतरागता, राग द्वेष से रहित होना ही वीतरागता है। राग द्वेष से ऊपर उठ जाना ये वीतरागता कहलाती है। सब कहते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ने से सभी कर्मों की निर्जरा हो जाती, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, कहीं भी लिख के रख लीजिएगा आप। धमला जी में तो लिखा हुआ है कि जो आते जाते खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर अवस्था में पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करता है वो निरंतर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता है। लेकिन सभी कर्म कट जाए ऐसा नहीं है। हाँ, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा तो करता है, लेकिन बांधो बांधते भी तो अनंत चले जाते हैं अपन, और फिर निर्जरा भी करते हैं तो माने जिसको अपन कहते ना कि बहुत ज्यादा तो आ रहा है और निकल तो कम रहा है, तो क्या होगा? कभी भी निल थोड़ी होगा, खाली थोड़ी होएगा। यदि ऐसा है तो अगले जन्म के बुरे कर्म का उदय ही नहीं होगा, हम हमेशा सुखी रहेंगे। क्या ऐसा सचमुच है? आपका प्रश्न जो है ना, आप स्वयं ही जो है मुश्किल में आप नहीं सोच पा रहे हैं। पूरी तरह से कर्म नमोकार मंत्र से ही कट जाते हैं ऐसा तो नहीं लिखा, असंख्यात गुनी निजरा लिखी है। और अगर देखा जाए तो पूरी तरह से भी कट जाते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अंजन चोर का उदाहरण सबको मालूम है, हैं? क्या किया था अंजन चोर ने? विद्या सिद्ध हो गई थी उस नमोकार मंत्र, हाँ, आकाश में आकाशगामनी विद्या उनको सिद्ध हो गई थी, छींके पर बैठ करके, और एक साथ 108 तागे काट दिए थे नमोकार मंत्र का स्मरण करने मात्र से। तो नमोकार मंत्र के स्मरण से जीवनधर को ने मंत्र सुनाया था एक कुत्ते को, वो स्वर्ग में देव हो गया था जाकर के। ऐसे बहुत से नमोकार मंत्र के, आपको बताएं जैनेन्द्र कुमार के जीवन का एक, वो बहुत अस्वस्थ हो गए और कभी उन्होंने भगवान को स्मरण नहीं किया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप अपने भगवान को स्मरण करिएगा, अब इसका कोई उपाय नहीं है, पूरे उसमें कफ जम गया है और हार्ट में, और पैरालाइज्ड हो गए थे, बोल भी नहीं फूट रहा था। तब उन्होंने लिखा अपने संस्मरण में कि मैंने बहुत, उस समय बहुत दुख हुआ कि मैंने, आज डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे अपना कोई मंत्र भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो वो नमोकार पढ़ते चले जाते थे और रोते चले जाते थे, भीतर से हिचकी ले ले करके वो रोए आधे घंटे तक, जब तक मंत्र पढ़ते रहे और रोते रहे। आधे घंटे बाद डॉक्टर फिर से आया तो उसने कहा, मिस्टर जैन आपने कौन सी मेडिसिन ली कफ निकालने की? तो उन्होंने कहा, कोई मेडिसिन नहीं ली कफ निकालने की। तो क्या करा आपने? हमने तो सिर्फ भगवान का स्मरण करा और खूब रो लिया। तो जी भर के रो लिया, स्मरण किया, उसमें सारा कफ पिघल करके और अपने आप बाहर निकल गया, स्वस्थ हो गए। कैसे हो गए? नमोकार मंत्र से, अपने नमोकार मंत्र से प्रणाम निर्मल कर लिए, सो स्वस्थ हो गए। तो ऐसा ही अगर कोई जीव नमोकार मंत्र से अपने प्रणाम निरंतर निर्मल करता चला जाए तो पुराने जितने कर्म हैं वे सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उसका जीवन भी सुखी हो जाएगा, पूर्णतः भी सुखी हो सकता है। कोई भी जीव को आज तक पंच नमस्कार मंत्र के बिना कल्याण तो हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना। मान लीजिएगा कि आज हमने एक समय भोजन करने का नियम लिया है, पर दूसरे समय अपनी पसंद की सब्जी बनी और हमारी नियत खाने की हो गई, पर तभी हमें ख्याल आया कि हमारा तो एक समय भोजन करने का नियम है, हम अपना नियम भंग नहीं करेंगे, अपने नियम का पालन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा मन हो जाने पर क्या पाप लगेगा? नियम पालने का पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दो चीजें हैं भैया, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। लिए हुए नियम में मन से थोड़ा सा ग्रहण करने का भाव आने पर बहुत थोड़ा सा पाप लगता है। देखना हिसाब, कोई नियम लिया है और मन से उस चीज को ग्रहण करने का त्याग किया, किसी चीज को उसको ग्रहण करने का मन में भाव अकेला आया है तो थोड़ा पाप है, वचन से कह दिया तो थोड़ा और ज्यादा है, और शरीर से अगर उसे ग्रहण कर लिया तो फिर पूरा भंग हो गया। मन में ग्रहण का भाव आया तो उसे अतिचार कहेंगे, वचन से कहा तब भी वो अतिचार है, लेकिन शरीर से हमने ग्रहण ही कर लिया तो वो अनाचार है, वो नियम भंग हो गया। अब इससे उल्टी स्थिति है, किसी के मारने का, किसी को तकलीफ पहुंचाने का मन में विचार आया तो सबसे ज्यादा पाप है। वचन अकेले से कहा है कि मारूंगा तो उससे कम है, और शरीर से एक तमाचा मार दिया तो कोई ज्यादा नहीं, मन में विचार नहीं था वो तो सिर्फ, ये उल्टा हिसाब है बिल्कुल। हिंसा मन से ज्यादा होती है, वाणी से उससे कम और शरीर से उससे कम, लेकिन लिए हुए नियम को अगर मन में सिर्फ आया है विचार तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, वाणी से कहा है तो भी नहीं बिगड़ा, और शरीर से अगर कर लिया है तो पूरा नियम नष्ट हो जाता। दोनों के कह रहे हैं उसमें उतना ही दोष लगेगा, आपने जो अपने मन को संभाल करके और उस नियम को नहीं तोड़ा है इसका पुण्य लगेगा, और वो थोड़ी देर के लिए जो ग्रहण करने का आपका भाव आ गया उससे थोड़ा सा पाप कर्म का बंध भी उसमें साथ में हो गया। दोनों चीजें हैं भैया। हाथ में कड़ा पहनना ये किस संस्कृति का द्योतक है? कौन संस्कृति को नहीं हो, उपद्रव को द्योतक है और कुछ नहीं, इनमें का संस्कृति है हाथ में कड़ा पहनना, फिर पूरे जेवर पहनन ना को और का। अब जब कड़ाई पहनने हैं लूहे को तो और जेवर पहनो, बनवा लो अच्छे, जो 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 चीजें पहनने की हैं है? वैसे राजा महाराजा लोग जो है कवच इत्यादि धारण करते थे, बाजूबंद पहनते थे, वो जो श्रृंगार है वो तो अब उसके वो तो दिन रहे नहीं। ये कड़े की संस्कृति तो जो है संस्कृति नहीं है, ये तो विकृति है, हाँ और कुछ नहीं, इसमें तो सिर्फ जो है अय्याशी झलकती है और कुछ नहीं झलकता। मैं तो बता, मैं स्पष्ट ऐसे ही बोलता हूं, इसमें मतलब एक तरह से गुंडागर्दी झलकती है, बस सीधी सीधी और हिंदी में कह दें शुद्ध। ये जो कड़ा पहने रहते हैं बिल्कुल दूर से ही लग जाता है कि आदमी जो है वो खराब आदमी है, भला आदमी तो नहीं है, भला आदमी होएगा तो नहीं पहनेगा। आप खुद देख लो, आप नमोकार मंत्र का कड़ा पहने हैं भाई साहब, और शुद्धि अशुद्धि का कोई ध्यान ही नहीं, उसी हाथ से शुद्धि अशुद्धि कर रहे और नमोकार लिखा हुआ कड़ा पहन लिया, क्या मतलब है? तो ये तो कोई संस्कृति नहीं, विकृति। अच्छा पूछ लिया आपने, हाँ। और नीचे क्या लिखा ये नहीं समझ में आ रहा, धुआं, धुएं में भी जीव है क्या? संभव है, स्मोक में भी जीव राशि हो सकती, हाँ अग्नि काय। काय क्लेश क्या दुख के अंतर्गत आएगा? नहीं भैया, काय क्लेश जो है, काय क्लेश की परिभाषा क्या है? शरीर के शक्ति को बढ़ाने के लिए और आत्मबल बढ़ाने के लिए जो विभिन्न प्रकार से तपस्या की जाती है वो काय क्लेश कहलाती है। उसमें शरीर की प्रसन्नता रहती है, मन की भी प्रसन्नता के साथ काय क्लेश किया जाता है। मैं एक घंटे तक जो है नमोकार की जाप करूंगा, मैं एक घंटे तक धूप में बैठ करके और भगवान का स्मरण करूंगा, बताइएगा। काय क्लेश तो ऐसा तप है, और शरीर को तकलीफ देना वो ऐसा है जैसे कि घंटे भर बैठ करके और पत्थर तोड़ रहे हैं धूप में बैठे हुए हैं, कोई काम अटक गया है सो धूप में खड़े खड़े उसको कर रहे हैं, और हम देखते रहते थे कि अभी गर्मी में दीवार बना रहे हैं कला वो ये मिस्त्री वगैरह बेचारे धूप में ही जो है अब पेट पालना है तो कर रहे हैं, ये है शरीर को दुख दे रहे हैं, हाँ, और केशलुंचन कर रहे हैं आनंद के साथ, उपवास कर रहे हैं, इसमें ये तपस्या कहलाएगी, क्योंकि हम कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से खुश होकर के कर रहे हैं, संक्लेश पूर्वक नहीं कर रहे हैं। जिसमें संक्लेश पूर्वक किया जाए तो वो सब दुख में जाएगा, और जिसमें अपने आत्म कल्याण और कर्मों की निर्जरा के लिए किया जाए वो काय को दुख, उससे काय को दुख का बंध होगा भैया, ऐसा समझिएगा। देव दर्शन का नियम, रोज जो है 7 से ज्यादा हरी नहीं खाएंगे, और जमीन कंद का सबका त्याग, अनजान फलों का त्याग, और 20 साड़ी रखेंगे, स्वाध्याय मती माता जी से पीछी ली थी तब से त्याग है, बहुत अच्छी बात है, जितना आपका त्याग है उतना फिर से हम दे देते हैं। हमारे तो इस बहाने काय उत्सर्ग हो जाते हैं, आप नियम ले रहे अपना लाभ है कि नहीं। मंडी वगैरह में एक बार नियम की लाइन लगी, सन 88-89 में 1 बजे से शुरू होती थी, 4:30 बजे तक चलती थी। एक दिन गिन करके 108 लोगों को नियम दिया, 108 बार नमोकार 9 बार पढ़ा। हमने कहा ये तो जो है हमारी इतनी सारी कितनी जाप हो गई, 9 जाप हो गई, 9 बार नमोकार पढ़ा और 12 108 तो 9 पूरी जाप हो गई। इस तरह से तो लाभ है इसमें। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, इन मोहनी कर्म कैसे भावों से बनते हैं ये फिर से समझा दीजिएगा। ये तो अपन को मालूम है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म कैसे बनते हैं इस पे अपन चर्चा कर चुके थे। तत्पदोष निन्नहम आश्चर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण यो, दूसरे के अच्छे ज्ञान में दोष लगाना, दूसरे के ज्ञान के साधनों को डैमेज कर देना, दूसरे के अच्छे ज्ञान को मिथ्या ही कह करके उस ज्ञान का उच्छेद कर देना, या कि अपने गुरु का नाम छिपा लेना, शास्त्र का नाम छिपा लेना, ये सब जो है अपने ज्ञान को ढकने वाले कर्म। और दर्शन भी इसी तरह से, अगर आप इसको विशेष रूप से समझना चाहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा सुबेरे, और वो राजपार्थिक में बहुत डिटेल में दिया है, अपन ने इस पर चर्चा संक्षिप्त में कर ली थी, सब दिए हैं कि कैसे दूसरे की अच्छी दृष्टि पर दोष लगाना, दूसरे की आंख फोड़ देना, ये सब दर्शनावरणी के लिए, या फोड़ने का भाव रखना, अरे हमारे अपने अपनी अच्छी दृष्टि का अहंकार करना कि हमारी आंख तो बहुत बढ़िया है, हमारी आंख की रोशनी तो बहुत अच्छी है, तो कहते इससे भी जो है। और दिन में सोना, हाँ दिन में सोने से दर्शनावरण कर्म खूब बनता है, ध्यान रखना, क्योंकि वो सोने का समय नहीं है, दिन में, रात में सोने का है, आपने दिन में सोए। तो ऐसे भाष्य मोहिनी कर्म का भी दिया हुआ है, दर्शन मोहिनी तक का तो केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य कषाय उदयास तीव्र परिणामास चारित्र मोहस्य, कषाय थोड़ी सी हुई और ज्यादा कर ली, तीव्र परिणाम कर लिए कषाय के तो और कषाय बन गई। और इसी तरह केवली है हमारा, श्रुत है, मुनि महाराज हैं, और इन सब की निंदा करना, इन सब की निंदा करने से क्या होगा, मिथ्यात्व बनेगा, दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होगा, ऐसे लेना जी। हम तारणपंथी हैं कोई बात नहीं, हमने तो कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया, इतने दिन से हैं हम, पर आप शायद जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ये नहीं जानते कि आपकी पीछे से आशीर्वाद मिलना कितने सौभाग्य की बात है। आपसे ऊपर संत निवास में हमने नियम लिया था तो आपने प्रसन्न होकर पीछे से आशीर्वाद दिया था, ठीक बात है। आपने कौन सा नियम लिया था मुझे याद आ गया, इन्होंने उस समय ये चर्चा चली थी कि ये नाच गाना नहीं करवाएंगे, फूहड़ गाने नहीं बजवाएंगे, अपने शादी में एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह शादी करेंगे, बुफे सिस्टम नहीं देंगे, ऐसे करके, तो ये अपने पास लिख करके लाए थे उस समय, वो आए थे वो हमारे पास, याद आ गया हमको, जिस समय ये यहाँ पर मैरिज वगैरह चल रही थी उसी के दौरान ऊपर दो बेटे आए थे, उसमें से एक जो है उन्होंने कहा था कि हम तो तारण पंथ के हैं, हाँ पीछे से मैंने दोनों के सिर पे आशीर्वाद दिया था, किंतु धार्मिक क्षेत्र में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता, आपने इतना त्याग किया तो वही तो इसलिए जो है, लेकिन आपका सानिध्य पाकर हमें सद्बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके फलस्वरूप हम और भी नियम ले रहे हैं, अच्छा ये बात है, बहुत अच्छी बात है, अभी तक हमारी जानकारी में ये नहीं था तो हमने नियम नहीं लिए थे, अब हम नियम ले रहे हैं। तीनों मकार का त्याग, मतलब मद मधु मांस का, 5 उदंबर फलों का त्याग, सप्त व्यसन का त्याग, बहुत अच्छी बात है, चाय कॉफी सब प्रकार के ब्रेड लहसुन बैगुन इनका त्याग, 24 घंटे में एक बार जरूर से देव दर्शन करने का आजीवन नियम लेते हैं, बहुत बड़ी बात हो गई है, तो इस तरह से बहुत अच्छा है। झूठ नहीं बोलने का नियम भी लेना है, पर महाराज जी दुकान पर बैठना पड़ता है, सिर्फ दुकान पर जो है वो थोड़ा बहुत तो ग्राहक से झूठ बोलना ही पड़ता, उसके अलावा तो झूठ तो आप ऐसा करिएगा, पर बदकार कठोर निंद नहीं वचन उचार है, दूसरे का जिससे मरण होता हो ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरे के मर्म का भेद होता हो उसके मर्म को पीड़ा पहुंचती हो ऐसा नहीं बोलेंगे, बस इतना ही रखिएगा, यही मोटा मोटा हिसाब। तो ये बहुत अच्छे नियम है, क्या आप यहां पर आकर के आशीर्वाद लेंगे या कि वहीं बैठे बैठे जैसी आपकी इच्छा हो आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा, हमने उस समय दूसरी चीज के लिए था, आप दूसरे इसके लिए भी दे रहे हैं आशीर्वाद,
छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर अभी
ठीक सप्त व्यसन में उसको उसमें नहीं आता, वो सप्त व्यसन के अंतर्गत नहीं, पर उसको भी छोड़ देना है। अभी नौ बार नमो कार पढ़ रहे हैं, देखो आराम से, बहुत अच्छा। इसमें भी नियम ही है, तो आखिरी का बड़े बहुत सारे नियम है इसमें। ये भी भैया महाराज जी, दोनों महाराज जी को नमोस्तु, अब महाराज जी आशीर्वाद। मैं अपने जीवन के बचे हुए बाकी समय को अच्छा बनाना चाहता हूं, इसलिए नियम ले रहा हूं। सातों व्यसन का जीवन पर्यंत त्याग करता हूं। आलू भटा गोभी प्याज अदरक मूली शकरकंद आदि वस्तुएं जो जमीन के अंदर उपजती हैं, उन सब का जीवन पर्यंत का त्याग करता हूं। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स ब्रेड डबल रोटी खुशबू वाला सैंड कोई भी नशे की वस्तु, इन सब का आजीवन त्याग करता हूं। चमड़े की बनी सारी वस्तुओं का उपयोग मैं जीवन पर्यंत नहीं करूंगा। पान सुपारी जर्दा तंबाकू आदि वस्तुओं का जीवन भर के लिए त्याग करता हूं। होटल की बनी कोई भी वस्तु का मैं जीवन भर के लिए त्याग करता हूं। रात्रि भोजन शादी ब्याह या तेरहवीं के बने भोजन का मैं जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूं। बहुत अच्छी बात है। अष्टमी चतुर्दशी को एक समय भोजन करने का नियम लेता हूं। अभी चतुर्दशी को 108 उपवास का यानी जल और दूध का नियम लेकर के उपवास का नियम चल रहा है। टॉफी गोलियां जो संतरे आदि से बनती हैं, उनका भी जीवन पर्यंत त्याग करता हूं। कोशा और रेशम के वस्त्रों का जीवन पर्यंत त्याग करता हूं। पांच उदंबर फल का जीवन पर्यंत त्याग करता हूं। प्रतिदिन दो समय भोजन और दोपहर में फल या दूध इतना ही उपयोग करूंगा। भगवान के अभिषेक पूजन के पश्चात ही जल ग्रहण करूंगा। बताइए ये किसका है भैया? कोई बड़े व्यक्ति का होना चाहिए। अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात। ये तो पहले भी उनका तो पहले भी नियम ठीक। अब आ गए आपके बड़े बड़े लोग, कह रहे थे आपके बड़े लोग नहीं आ रहे हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद। आज जो है नियम से ही प्रश्न पूरे हुए हैं, अब खत्म। अब महाराज जी जो है वो अपना वो जो कुंडलपुर की कविता है उसको सुनाएंगे, फिर अपन मैत्री भाव करें।